मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं किसी एक टॉपिक पर बात करने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें फिलहाल मेरे पास हैं, एक दो बातें भी कुछ ऐसी हैं कि उन सब बातों को मुझे आज ही आप तक पहुंचाना कुछ जरूरी सा मालूम पड़ रहा है, अदरवाइज चीजें पुरानी होती जाती हैं। इसलिए मुख्य विषय के रूप में यही मान करके चलें कि कुछ जरूरी बातें मैं आपसे करूंगा। तो आइए, वो जरूरी बातें क्या हैं। एक अच्छी खबर अखबारों में आपने पढ़ी, न्यूज में सुनी भी, और वो ये है कि फिलिस्तीनी और इसराइल के बीच युद्ध विराम हो गया है। थैंक्स गॉड कि ये युद्ध विराम हो गया है। देखते हैं कि यह युद्ध विराम कब तक चलता है, क्योंकि दोनों के बीच में जो आंतरिक तनाव है वो बहुत गहरा है। दूसरे देशों के जो इंटरेस्ट हैं वे भी कह लीजिए कि काफी मायने रखते हैं, लेकिन कम से कम फिलहाल राहत की खबर है। और आइए हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि युद्ध विराम जारी रहे। मैंने आप सबसे भारत के स्टैंड के बारे में बात की थी, और मुझे खुशी है कि आप में से बहुत से लोग स्टूडेंट्स ने मेल के जरिए मुझे सूचित किया कि जो फिलिस्तीनी इसराइल की जो समस्या है और भारत में इसकी जो स्थिति है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। मुझे ये जानकर के खुशी हुई। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि जब ये युद्ध विराम हो गया तो इसराइल का एक स्टेटमेंट आया था, और उसमें इसराइल ने ये कहा था कि भारत ने हमारा उस तरीके से साथ नहीं दिया जिस तरीके से साथ दिया जाना चाहिए। अब आप इसे किस रूप में लेंगे? मान लीजिए कि आप इंडियन फॉरेन सर्विस में सेलेक्ट हुए हैं और आप इस अभी भारत के फिलिस्तीन में, और अभी आप भारत के इसराइल में राजदूत हैं, तो आप इस स्टेटमेंट को किस तरीके से लेंगे? देखिए, ऐसा होता है, ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, वो हमसे कुछ और ज्यादा उम्मीद कर रहे थे। हम शायद उनके उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, लेकिन हमने उनका विरोध नहीं किया, बीच बीच की हमने बात की, क्योंकि देखिए हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाता है, और फिलिस्तीनी भी जानते हैं इस बात को, और इसराइल भी बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। इसीलिए न तो फिलिस्तीनी भारत से अब एक तरीके से यूं कह लीजिए कि बहुत ज्यादा नाराजगी व्यक्त कर सकता है, और न ही इसराइल, लेकिन फिर भी अपनी अपनी बात लोग रखते ही हैं। तो आप इसे सामान्य वक्तव्य के रूप में ही लीजिएगा, मतलब ये मत समझिएगा कि इसराइल कोई बहुत बड़ी शिकायत कर रहा है, और अगर कहीं ऐसा ना हो कि अब हमारे संबंध खराब हो जाए, नॉट एट ऑल। अगर हमें उनकी जरूरत है तो कहीं ना कहीं उन्हें भी हमारी जरूरत है ना, एक शक्ति संतुलन जैसा मामला इसमें चलता रहता है। ये एक अच्छी खबर थी, लेकिन एक बुरी खबर भी आपने पढ़ी होगी, और वो है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी नहीं रहे। बहुत बड़ा नाम है सुंदरलाल बहुगुणा जी का, और जब हम लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते थे तो जनरल स्टडीज के तहत इन्हें पढ़ते थे, सुंदरलाल बहुगुणा, जो चिपको आंदोलन जो चला है, जिसमें कि जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो बच्चे हैं, पेड़ों से चिपक जाते हैं जब ठेकेदार उन पेड़ों को काटने के लिए जाते हैं, और कहते हैं कि पहले हमें काटो, इसके बाद पेड़ों को काटना। चिपको आंदोलन 1973 में यह आंदोलन शुरू हुआ था, इसे बेहद पॉपुलरिटी मिली, ये बहुत ही लोकप्रिय आंदोलन रहा। चंडीदास भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा इसके अगुवा थे, और सच पूछे तो इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये थी, इसे महिलाओं का समर्थन मिला, ग्रामीण क्षेत्रों का समर्थन मिला, महिलाओं का समर्थन मिला। और कहा जाता है कि शायद यह समर्थन ज्यादा इसलिए मिला क्योंकि यह केवल पर्यावरण रक्षा से संबंधित नहीं था, बल्कि सच पूछिए तो यह एक प्रकार से पर्यावरण की रक्षा और जीविका का साधन, इन दोनों को लेकर के चल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस आंदोलन को बहुत जबरदस्त रूप से लोकप्रियता और प्रसिद्धि मिली। एक काम मैं अब आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं जानबूझ करके, कि यह जो चिपको आंदोलन जो सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में हुआ, इसके बीज कहां थे, थोड़ा ढूंढने की कोशिश कीजिए। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अपने में याद दिलाना चाहूंगा कि क्लासेस के जो हमारे स्टूडेंट हैं, कि अगर उन्होंने ये लेक्चर सुन लिया हो, खासकर जो पर्यावरण से संबंधित जो आंदोलन हुए हैं, कुछ आंदोलन मैंने बताए हैं, अगर वो सुन लिया हो उन्होंने वह टॉपिक, तो याद करने की कोशिश करें कि इसके बीज कहां थे चिपको आंदोलन के। हालांकि चिपको आंदोलन के मामले में आज जो फेमस नाम है वो सुंदरलाल बहुगुणा जी का है। मित्रों, तो ऐसे महान हस्ती को मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक और खबर आपने दोस्तों पढ़ी सुनी, देखिए क्या होता है, वो चक्रवात यास को लेकर के है। बताइए, हम अभी ताउते से मुक्ति पाए थे कि ये यास चक्रवात फिर से आकर खड़ा हो गया। पहले पश्चिम घाट पर ताउते आया था और यह जो यास आ रहा है यह हमारे पूर्वी घाट पर आ रहा है। इसलिए आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, खासकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का नाम ज़्यादा आ रहा है कि इनके तटों से टकराने के बाद इसकी इतनी गति होगी और वहाँ बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं। पश्चिम घाट और पूर्वी घाटों में फ्रेंड्स अक्सर तूफान, साइक्लोन आते रहते हैं। न्यूज़ में आपने अक्सर एक वाक्य सुना होगा, मैं चाहूँगा कि आप इस पर विचार करें कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर डीप डिप्रेशन का क्षेत्र बन रहा है, जिसे आप हिंदी में कहेंगे कम दबाव का क्षेत्र निर्मित हो रहा है। और फिर वो कहते हैं कि कम दबाव का क्षेत्र निर्मित हो रहा है इसलिए साइक्लोन आने की संभावना है, आशंका है, और यह डीप डिप्रेशन जितना ज्यादा होगा उतनी ही तीव्रता का साइक्लोन आएगा। अक्सर आप न्यूज में भी सुनते होंगे और अखबारों में भी इस तरह के वाक्य पढ़ते होंगे। यहां भी मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं और होमवर्क ये है फ्रेंड्स कि जब आप इस तरह के वाक्य पढ़ते हैं तो आप सीधे रट लेते हैं या समझने की कोशिश भी करते हैं कि भाई ये जो डीप डिप्रेशन है इसका एक तो साइक्लोन से क्या संबंध है और ये जितना डीप होगा उतना ज्यादा गहरा साइक्लोन आएगा, क्या रिलेशन है इसका। ये मैं आपको बेसिक तैयारी कराने की दृष्टि से बता रहा हूं और इसी तरह से बेसिक्स की तैयारियां भी होती हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। क्योंकि जब आप बेसिक्स में कुछ चीजों को समझ लेते हैं तो फिर उससे जुड़े हुए ढेर सारे प्रश्न, चाहे वो प्री में पूछे जाएं या मेंस में पूछे जाएं, आप बड़े आराम से उनके उत्तर दे लेते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होती, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ उत्तर यही होगा। और मैंने ये फैसला किया है कि अभी देखिए हम लोग प्री के ऊपर बात नहीं कर पा रहे हैं, प्री पर हम लोग बात करेंगे, है ना, चूंकि अब एग्जाम की डेट थोड़ी सी बढ़ गई है तो मैं भी दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अब ज्यादा आ गया हूं। हम बकायदे प्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें, कैसे सही उत्तर तक पहुंचे, इस पर बातें कर रहे थे, इस पर हम बातें करेंगे। और अब मैंने उसमें एक और भी एड ऑन कर दिया है, जोड़ दिया है कि बेसिक्स होती क्या है और कैसे आप बेसिक्स की तैयारी करेंगे, क्वेश्चंस को लेकर के मैं इस पर चर्चा करूंगा कि देखिए आप इस बेसिक्स को जान लीजिए। इस बेसिक्स को जानने के बाद अब आप इसे, ये जो प्रश्न पूछा गया है इस पर आप अप्लाई कीजिए, देखिए आपसे यह प्रश्न बन रहा है या नहीं बन रहा है, मैं इस पर आपसे बातें करूंगा। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए और हो सकता है बहुत जल्दी हम शुरू कर दें, ये तो डिपेंड करता है कि दूसरी क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, इसलिए थोड़ा सा अभी वो टल रहा है। दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए, आंसर राइटिंग के लिए। एक तो ये था कि अगर आप किसी जिले के कलेक्टर हों और आपको आपदा प्रबंधन पर प्लान बनाना हो तो आप कैसे प्लान बनाएंगे, इस पर मुझे काफी उत्तर मिले। और उस उत्तर में अगर मैं वो जितने भी मुझे आंसर मिले अगर उसमें कहूं तो 75% जो आंसर थे वो ठीक थे, ठीक ठाक थे, बहुत अच्छे तो मुश्किल से 10% थे, लेकिन चलिए मैं 75% को ठीक ठाक मान सकता, 25% रिजेक्टेड थे। लेकिन जब फील्ड कमांडर वाला जब प्रश्न मैंने आपको दिया तो दोस्तों इसमें मुझे जितने भी आंसर मिले हैं उनमें से मुश्किल से 5% आंसर ठीक होंगे। देखिए 75% गिर करके यहां 5% रह गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपदा प्रबंधन पर नंबर आपको आंसर जो मुझे मिले थे उसकी तुलना में 10 गुने ज्यादा आंसर मुझे कमांडर पर मिले हैं, फील्ड कमांडर पर मिले हैं। ऐसा क्या हुआ? और इसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आपदा वाले में बहुत अच्छा आंसर दिया है लेकिन यहां बुरी तरह से फेल हो गए हैं। क्यों ऐसा क्यों हुआ? हालांकि दोनों बहुत ही कॉमन तरीके के क्वेश्चन हैं, इनके लिए कोई बहुत ही विशिष्ट अध्ययन की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। वो क्यों नहीं कर सके, उसके केंद्र में क्या है? दोस्तों उसके केंद्र में यही सबसे बड़ी बात है कि जो बेसिक्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए वो बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते हैं। और जब बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं तब फिर आप क्या करते हैं, और जब बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते हैं तब मालूम है आप क्या करते हैं, आप करते ये हैं कि जो कुछ भी आपके दिमाग में है बस आप उसे ही सच मान लेते हैं और फिर जो आपको सच लग रहा है उसे आप सही उत्तर के रूप में यस कराते हैं या आंसर राइटिंग के रूप में आप लिख देते हैं। वो जो बारीक अंतर है आप उसे नहीं समझ पाते। जो अनिल कुंबले हमारे जो बॉलर रहे हैं, कल मैं उनका एक पढ़ रहा था, उनका एक स्पीच का छोटा सा हिस्सा, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने ये कहा कि देखिए हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हम लोग टॉपिक की एक तैयारी कर लेते थे, तो टॉपिक की तैयारी तो एक ही होती है, उस पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कई कई तरह से पूछे जाते हैं, और जो उसके उत्तर दिए जा सकते हैं वो सब इसी से ही दिए जाते हैं। वो अपने बॉलिंग के बारे में बता रहे थे, है ना, कि जब वो बॉलिंग करते हैं तो बॉलिंग के कैसे तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और उसमें से फिर बारीकियां निकलती है, उसके तहत फिर उन्होंने ये आंसर की बात कही। यानी कि बेसिक्स सभी टॉपिक्स के एक एक होते हैं, जब आप बेसिक्स को समझ लेते हैं तो फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब के आप आंसर दे देते हैं। फील्ड कमांडर में आपसे गड़बड़ी कहां होगी, आपने इसे भी राष्ट्रीय आपदा की तरह समझ लिया। कुछ लोग तो फील्ड कमांडर के रूप में केवल कोरोना को लेकर के चल रहे हैं कि साहब कोरोना होगा तो कलेक्टर ये करेगा वो करेगा, कुछ पूरे कलेक्टर के क्या दायित्व होते हैं इसको लेकर के चल रहे हैं, कलेक्टर को क्या करना चाहिए इसको लेकर के चल रहे हैं, उसका क्या रोल है इसको लेकर के चल रहे हैं। जबकि शब्द है कमांडर, मैंने आप लोगों को सांकेतिक रूप में कहा भी था कि कमांडर है वो, और वो फील्ड का कमांडर है, वो केवल कोरोना का कमांडर नहीं है। तो अगर आप कोरोना का कमांडर लिखने लगेंगे तो आप भटक गए, आपको 10 में से मुश्किल से 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आप कमांडर ना करके कोरोना कमांडर बना दिया आपने कलेक्टर को। जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर सीधे सीधे कह भी फील्ड का कमांडर है, केवल कोरोना के मामले में नहीं, हर के मामले में वो कमांडर है, कमांडिंग पोजिशन में रहता है, सारे अधिकार उसके पास है, सारे विभाग उसके नियंत्रण में होते हैं, वो किसी को कोई भी आदेश दे सकता है, सरकार से किसी भी तरह के आदेश लेकर के आगे पासान कर सकता है, सरकार को अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो केवल कलेक्टर से पूछेगा, 144 धारा लागू करने का अधिकार कलेक्टर को है, एसपी उसके अंडर में काम करता है, ये कमांडिंग पोजीशन है, कमांडर है वो, ये उत्तर होना चाहिए। लेकिन नहीं समझ पाए, इसलिए नहीं समझ पाए कि बेसिक्स क्लियर नहीं थे। दोस्तों यहां हमसे सबसे बड़ी चूक होती है मेंस में, और इसीलिए इतने सारे आप सबके द्वारा भेजे गए मेल्स को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं आगे चल करके आप सबसे इस पर भी बात करूंगा कि देखिए बेसिक्स क्या होती है, इस पर दोस्तों मैं आप सबसे बातें करूंगा। तो फ्रेंड्स आज बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, राकेश निगम जी, आप सीनियर सिटीजन हैं और आपने खासकर अप्रैल के जो करेंट अफेयर्स हैं YouTube पर जो मैंने प्रोवाइड किया हमारी एकेडमी ने, उसको देखने के बाद जिस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं निगम जी, उसके प्रति मैं व्यक्तिगत रूप से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप जैसे सीनियर सिटीजन्स जब इस तरह की बातें करते हैं तो हम जैसे लोग जो थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं उनका खून बढ़ता है, उनमें उत्साह का संचार होता है। तो यह उत्साह का संचार करने के लिए मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आपके प्रति पूरे मन से आभार व्यक्त करता हूं। दूसरे दोस्तों के नाम हैं विजय शेरावत जयपुर से, अंकित राज मुंबई से, दिवाकर दास रांची से, और जगमोहन गोले बड़वानी मध्य प्रदेश से, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही मित्रों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं, नमस्कार।